Good evening and welcome to the Friday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Amit Goyal.
नमस्कार मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है. आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और चर्चा करेंगे. चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार विशाल दहिया. विशाल, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
धन्यवाद अमित जी. थैंक यू अनुभव.
सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर, तो अंग्रेजी में हेडलाइन के साथ अनुभव.
थैंक यू अमित. India's equity benchmark indices settle marginally low. Sensex sheds 72 points. Nifty ends around 0.1% down. India's forex reserves touch a record high of over $689 billion. Rupee rises 8 paisa to close at 83 rupees 89 paisa against the US dollar. And crude oil trades higher today due to the impact of Hurricane Francine.
आर्थिक सुर्खियों में, घरेलू शेयर सूचकांकों में मामूली गिरावट. सेंसेक्स में 72 अंक का नुकसान. निफ्टी भी 0.1% की गिरावट से बंद. भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़त से रिकॉर्ड स्तर 689 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंचा. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रूपया 8 पैसे की मजबूती से 83.89 रूपये प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज. और तूफान के असर से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी. सबसे पहले नजर डालते हैं शेयर बाजार पर. घरेलू शेयर सूचकांकों में आज मामूली गिरावट दर्ज हुई. बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.1% के नुकसान से 72 अंक गिरकर 82,891 के स्तर पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.1% की गिरावट से 32 अंक गिरकर 25,356 के स्तर पर बंद हुआ. हालांकि बीएसई मिडकैप सूचकांक में 0.5% और स्मॉल कैप सूचकांक में लगभग 1% की बढ़त दर्ज हुई.
India's equity benchmark indices Sensex and Nifty settled marginally lower today. At close, Sensex dropped 72 points to close at 82,891, and the NSE Nifty was down 32 points to close at 25,356. Both the indices locked losses of around 0.1%. In the NSE, 188 companies hit their 52-week high, 17 hit their 52-week low. The broader market at the BSE outperformed the benchmark indices, with mid-cap index gaining nearly 0.5% and small-cap index adding nearly 1%. In the Sensex index, 19 out of 30 companies ended in negative territory. The top laggards today were Adani Ports, which lost nearly 1.5%, ITC shed more than 1%, and NTPC fell nearly 1%. The top gainers were Bajaj Finance, which rose 2.3%, Bajaj Financial Services increased 2.1%, and IndusInd Bank added 1.4%. In the sectoral indices at the BSE, 13 out of 20 sectors locked gains. The top gainers today were Realty, with a nearly 2% rise, Consumer Durables rose more than 1%, and Metal, as well as Commodities, gained more than 0.5%. The overall market breadth was positive at the BSE, as out of 4,067 companies, shares of 2,477 companies advanced, shares of 1,481 companies declined, and shares of 109 companies remained unchanged.
अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 8 पैसे की मजबूती से 83.89 रूपये प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ. डॉलर इंडेक्स 101 के स्तर पर दर्ज हुआ. विशाल, अगर शेयर बाजार की दशा और दिशा के बारे में बात की जाए, तो कल जहां एक रिकॉर्ड स्तर को छूने के बाद वापस लौटा, क्या माना जाए कि इस स्तर पे कहीं न कहीं सूचकांकों में कहीं कोई दबाव है, या एक अभी बाजार एक रेंज बाउंड मोड में ही रहना चाहता है?
देखिए, आज शुक्रवार का दिन है और कल बृहस्पतिवार का दिन था, तो ये दो दिन मार्केट के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि बृहस्पतिवार के दिन जो शॉर्ट्स एंड ऑप्शंस फ्यूचर्स जिनकी हम बात करते हैं, उनकी क्लोजिंग का टाइम होता है, तो एक स्टैंड लिया जाता है, क्लोजिंग होती है. और कल की जो शार्प अपटिक थी, जिस शार्प राइज थी मार्केट में, और उसको आज जिस तरह से मार्केट ने बिहेव किया, उससे अगर कंपेयर करें तो ये कोई नई बात नहीं है. जब इस तरह की शार्प अपटिक दिखाई देती है हफ्ते के आखिरी दो दिनों में या एक दिन में, तो उससे अगला दिन जो होता है, और वह अगला दिन अगर शुक्रवार आता है, तो उसमें ज्यादातर मार्केट रेंज बाउंड ही रहता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहां यह है कि जो इंडिकेटर्स हैं वो क्या कहते हैं, मार्केट किन इंडिकेटर्स को ले रहा है। तो अगर इंटरनेशनल क्यूज की बात करें तो वो भी पॉजिटिव हैं, अगर डोमेस्टिक क्यूज की बात करें तो वो भी पॉजिटिव हैं। शुरुआती दौर में जब आज सुबह मार्केट खुला तो शुरुआती दौर में झटका जरूर लगा, लेकिन मार्केट को रिकवर करने में ज्यादा समय नहीं लगा। यानी कि ओवरऑल अगर हम आज के दिन की परफॉर्मेंस देखें तो वो रेंज बाउंड रही है। और ये रेंज बाउंड रहना भी कोई, जैसे मैं कह रहा था कि कोई नई बात नहीं है, क्योंकि इस तरह की रेंज बाउंड परफॉर्मेंस खासतौर पे जब या तो मार्केट झटके से ऊपर जा रहा हो या मार्केट झटके से नीचे जा रहा हो, तो उसके बाद एक या दो दिन की परफॉर्मेंस रेंज बाउंड रहती है। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात जो होती है वो ये होती है कि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनका क्या इंडिकेशन आ रहा है, किस तरह से मार्केट बिहेव कर रही है। और एक्सटर्नल फैक्टर्स ज्यादातर पिछले लगभग तीन से चार दिन में अगर देखें तो ज्यादातर एक्सटर्नल फैक्टर्स पॉजिटिव रहे हैं, चाहे वो भारत के इन्फ्लेशन फिगर्स की बात की जाए या फिर अमेरिका के इन्फ्लेशन फिगर्स की बात की जाए, जो यूएस बॉन्ड यील्ड है उसकी बात की जाए, वहां से क्या इंडिकेशन आ रहा है, और जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है उसने जो अपने रेट कम किए हैं, ब्याज की दरों में जो कटौती की है, और ये सीधा सीधा जो बाकी बाजार हैं विश्व के उन पे भी दिखाई दे रहा है। अगर आप यूरोपीय बाजारों की तरफ नजर डालेंगे तो ज्यादातर यूरोपीय बाजारों में भी पॉजिटिव इंडिकेशन ही नहीं है आज, केवल अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद चीन और जापान के बाजारों में थोड़ी सी गिरावट आई है, बट वो हल्की, उसे भी रेंज बाउंड ही कहा जा सकता है।
विशाल, बिकॉज यू नो यू सेड द फैक्टर्स दैट अफेक्टेड द मार्केट्स टुडे वर बिकॉज इट वॉज बेसिकली अ वीकेंड एंड इट वॉज रेंज बाउंड, बट इफ यू मूव फॉरवर्ड एंड गो टू द नेक्स्ट वीक, यूएस फेड इज सपोज टू हैव इट्स FOMC मीटिंग ऑन 17th एंड 18th ऑफ दिस मंथ, and the markets are widely anticipating a rate cut, the first of the cut of the rate cut cycle by US Fed. Do you think that's going to affect moving forward? How is it going to affect the markets? How do you see the markets behaving next week?
Anubha, before we move to the next week, I would say today being Friday, let's take a recap of how the market behaved for the entire week.
Okay.
That'll give us an indication as to what lies for us for the next week. Now this week, if you look at both Nifty and Sensex, BSE, there has been almost around 3% increase for the entire week. In fact, if you look at all sectoral indices, there has been a gain. Somewhere the gain has been less, somewhere the gain has been high. Nifty banking has performed very well. The mid-cap segment has performed very well. So that is, again, a sort of a basis of what to expect from here onwards. Now, why did market perform in such a positive manner this week? Because the cues which were coming in, the indications which were coming in, the basis for those indications which was forming was positive. As I was pointing out earlier, the European Central Bank's decision, which came in
yesterday.
But there were indications coming in that, yes, we can expect that there is going to be some ease from the ECB. Now, that would have an impact on the European markets. That would have, again, a domino effect on the Asian markets as well, and, of course, the Indian market. Now, the second important part here is the U.S. market, the U.S. inflation figures, the U.S. markets recovery as well. If you go last to last week and take a cursory look at the U.S. market, it looked like it's all mayhem, it's all red everywhere. So, but in the past few days, we've seen how the U.S. market has also recovered, because the domestic cues were positive, despite the fact that the country is in the grip of a very, a strong election campaign.
Yes.
But then the markets are behaving positively. The indications are coming in fine. The U.S. 10-year yield, if you look at those figures also, today also they have, gone down a little bit further. And that indicates that the U.S. Fed is expected to give some breather. Mm-hmm. Now, will it be 50 basis point? Will it be 25 basis point? Is something which can only be speculated, but it has to be something. And I remember, this is a speculation which has been going on for months now, but it didn't look like that the U.S. Fed had the actual positioning in the market to go ahead and take that final call that, okay, this is the time, now we'll break free and then we'll start coming down. But the indications are that now they start going to come down, and those indications clearly point out as to what lies in the next week.
Right.
The market has gone up sharply this Thursday. has been range bound Friday. Next week we are expecting, you know, the US Fed results and all that. Look at India inflation figures, 3.7%, very well within the RBI's target range. So clearly, from the domestic point of view as well, looks like everything is hunky-dory. So we can expect the markets to, you know, as Amitji was pointing out, will they stay range-bound? We can expect the markets to break that range in the upper circuit.
Let's hope so.
Vishal, lekin jis tarah se aapne kaha, bahut sari sakaratmak jo hain cheezein nazar aani hain bazaar mein. क्या उसमें ये सारी चीजें कोई बनने के बाद जैसा आपने कहा बाजार में अपने आपको एक इंडिकेशन देना शुरू कर देता है क्या हम ये माने कि पहली तिमाही में जो कंपनी जगत के नतीजे थे अब दूसरी तिमाही खत्म होने में ज्यादा समय भी नहीं रहा है क्या हमारे पास मानने के प्रयास कर रहे हैं कंपनी जगत से बेहतर या उससे भी बेहतर नतीजे हमें मिलने वाले हैं जब अक्टूबर में हम इनकी समीक्षा करेंगे या क्योंकि आपने कहा देखिए बहुत पॉजिटिव इंडेक्स आप कहते हैं कि भाई इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति महंगाई की दर भी काबू में है रिजर्व बैंक के पास तरलता लिक्विडिटी भी पर्याप्त मात्रा में है इसके साथ साथ क्या आने वाले समय में हम ये भी मानने को तैयार हो जाएं कि रिजर्व बैंक ब्याज दरों में भी कुछ राहत देने की उम्मीद करेगा
मैं आपका आखिरी सवाल पहले लेता हूं रिजर्व बैंक से संबंधित क्योंकि हम ईसीबी और यूएस बैंक की बात कर ही रहे थे तो देखिए आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है और जो स्टैंड है वो बड़ा हॉकिश रहा है और वो जरूरी भी था क्योंकि जो इन्फ्लेशन है जो महंगाई दर है उसको काबू में रखना है और सरकार और आरबीआई के बीच में एक तालमेल की तरह से काम चले कि सरकार की पॉलिसीज जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है उसको मिरर करें और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी जो सरकार की पॉलिसीज है उनको मिरर करें ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके बजट में सरकार ने भी साफ कहा था कि हम रेंज बाउंड रखेंगे पूरी कोशिश रहेगी और वो अगर अब के आंकड़े आप देखते हैं तो वो 4% से नीचे है 3.7 है कम्फर्ट जोन है आरबीआई के लिहाज से लेकिन थोड़ा सा आंकड़ों के अंदर आप झांक के देखेंगे तो फूड इन्फ्लेशन
जी
अभी भी हायर
वो तो मुझे लगता है कि अगर 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 ये अल्पकालिक है तो अभी जो कि बरसात फिलहाल और खासतौर पर उत्तर भारत में चल रही है उस पर दबाव तो रहना ही पड़ेगा
मैं बिल्कुल ही कह रहा हूं कि अगर ये सवाल जो आप और मैं जिसका जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो आप मुझसे पूछ रहे हैं मैं जवाब दे रहा हूं ये सवाल आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक में वहां जो महानुभाव बैठे हैं उनके सामने भी होगा और वो भी इसका जवाब जरूर ढूंढेंगे आंकड़ों के साथ लेकिन ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या केवल जो टारगेट रेंज है उसमें ओवरऑल इन्फ्लेशन है तो वो क्या उतना जरूरी है या फिर जो फूड इन्फ्लेशन अगर थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है तो उसका प्रोजेक्शन किस तरह से होगा क्या क्या वो आगे असर डाल सकता है तो गुंजाइश जरूर है उम्मीद जरूर है जरूर की जा सकती है और मेरा कहना है कि यूएस फेड का जो रेट कट होगा वो 25 बेसिस पॉइंट होगा या 50 बेसिस पॉइंट होगा और उसको फॉलो करते हुए बाकी जो सेंट्रल बैंक हैं वो किस तरह का फैसला लेते हैं आने वाले दिनों में ये भी बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि एक पूरा एक नाउ इकोनॉमी इज नॉट बाउंड बाय द ज्योग्राफिकल बाउंड्री सो
ग्लोबल
फिनोमेना सो इट हैव एन ओवरऑल इम्पैक्ट
विशाल क्योंकि आप ये बात कर रहे थे ऑफकोर्स वी वर टॉकिंग अबाउट inflation rate, the CPI based inflation, and we are talking about food inflation. So the RBI governor time and again has said very clearly in the last few, you know, MPC policy meetings that, you know, it's not going to, the decision, like you said, is not going to be based on just what the CPI inflation is. It's also going to be based on the food inflation, and they've been saying consistently that they're keeping an eye and they are worried about food inflation, the vegetable prices and the other, you know, the food item prices.
Yes, yes, so. Yes, indeed. And that becomes really important as well because ultimately, you know, if you look at the historic data of the inflation and you do a very cursory evaluation, you will find out that even though at some places, at some points in time in the history, the overall inflation was very well within the target range, but the food inflation was soaring. And then the resultant factor was that perhaps maybe 2 months down the line or 3 months down the line or 6 months down the line, that soaring food inflation led to the overall CPI data, yes. You know, moving out of the target range. So, you know, you can't just leave one important aspect out there. That is why the RBI is very bullish on the fact that you will have to look at the individual parameters in that metrics also, just not the overall numbers.
Vishal, main wapas se aapke sawal, aapke पास वही सवाल लेकर आऊंगा
जी
हमने बात करी कि जो पूरी विश्व की व्यवस्था है वो अब रेंज बाउंड नहीं रही या भौगोलिक दायरे में नहीं सीमित रही क्या एक ये परसेप्शन माना जाता था कि कहीं भी चुनाव हो रहे होते हैं तो उसका असर अर्थव्यवस्था पे तात्कालिक ही सही असर पड़ता है। क्या अमरीका में राष्ट्रपति चुनाव का असर भी हमें पूरी अर्थव्यवस्था पे कहीं देखने को मिलेगा, या ये रेट कट की जो बात कर रही, क्या कहीं इससे हम इसको कोई लिंक भाप सकते हैं, देख सकते हैं?
देखिए, अमेरिकी अर्थव्यवस्था और अमेरिकी राजनीति जो है वो थोड़ी सी और डेवलप्ड है इस मामले में से अगर कहा जाए तो, क्योंकि 250 साल पुरानी डेमोक्रेसी है और उनकी जो आर्थिक व्यवस्था है, जो अर्थव्यवस्था है, जो तंत्र है पूरा, वो भी काफी पुराना है, उनका फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है। तो ये मानना कि केवल वहां चुनाव हो रहा है
इसलिए रेट कट हो गए, नहीं होगा
रेट कट हो गए हैं या इस वजह से मार्केट गिर गई है, ये हमने पिछले कई चुनाव में देखा कि चुनाव का अर्थव्यवस्था जिस तरह से काम कर रही है उस पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ता है तब तक जब तक के कोई बड़ा बदलाव ना हो। जैसे कि थोड़ा सा एक दो महीने पहले जाइए, जो मतलब जब जो बाइडेन के बदले जब कमला हैरिस मैदान में आईं तो हल्का सा टिक दिखाई दिया था, वो यूएस इकोनॉमी में थोड़ा सा कुछ जिसे गियर चेंज कहते हैं वो थोड़ा सा दिखाई दिया था, उसे पॉजिटिव कहें या नेगेटिव कहें वो जो भी माना जा सकता है, लेकिन केवल वो उतने तक ही सीमित है। क्योंकि अमेरिका में हर चार साल में चुनाव होने हैं, हर चौथे साल 5 नवंबर को ही चुनाव होना है, हर चौथे साल 20 जनवरी को ही नया राष्ट्रपति शपथ लेगा, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। दो ही पार्टियां हैं मेजर जो है, मतलब उनकी पॉलिसीज बहुत पब्लिकली वो बताते हैं और पब्लिकली चर्चा करते हैं, हमारे यहां भी पब्लिकली चर्चा होती है, लेकिन कोई असर उतना दिखे नहीं। और इसको आप अगर हम अपनी अर्थव्यवस्था और अपनी राजनीति से भी कंपेयर करें तो पता चल जाएगा, आज से 30 साल पहले शायद चुनाव का जो असर बाजार पे पड़ता होगा वो आज की तारीख में चुनाव का असर बाजार पर नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं असर पड़ता है, असर पड़ता है, लेकिन वो उतना असर नहीं पड़ता और उतनी देर के लिए नहीं पड़ता। आपको चुनावी नतीजे जिस दिन आ रहे होंगे उस दिन आपने देखा होगा मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाएगा, जिस दिन पोलिंग होगी किसी दूसरे फेज की या पांचवें फेज की या छठे फेज की उस दिन मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाएगा, लेकिन वो एक इमीडिएट फैक्टर होता है और फिर उसके बाद मार्केट के जो ओरिजिनल फैक्टर्स हैं, फंडामेंटल्स जो हैं या जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, दे टेक ओवर एंड दे दी लार्जेस्ट ड्राइविंग फोर्स।
एक बहुत संक्षेप में, क्या दूसरी तिमाही में कंपनी जगत का बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद करना लाजमी है?
बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि पहली तिमाही में कंपनियों के जो प्रदर्शन रहे थे, जो उनका डेटा था वो इतना पॉजिटिव नहीं था और उसका नुकसान जो है मतलब मार्केट में ट्रेडर्स ने भुगता, क्योंकि वो दिखाई दिया कि भाई मार्केट अचानक से एक्सपेक्टेशन से बहुत नीचे चला गया मामला। तो इस बार उम्मीद की जा रही है कि जरूर आना चाहिए, लेकिन मेरा फिर से ये कहना है कि ये जो आंकड़े हैं अमित जी, ये आप और मैं कहूंगा तो शायद कुछ इकोनॉमिस्ट मुझसे सहमत नहीं होंगे कि जो तिमाही के आंकड़े आते हैं वो मार्केट की दुखती रखे। आप इन्फ्लेशन के फिगर्स हैं उनको आप उनको एक्सट्रापोलेट कर सकते हैं, उनमें आप स्पेकुलेट कर सकते हैं, आप फेड यूएस फेड घटाएगा कि नहीं घटाएगा, उसका हॉकी स्टैंड होगा कि नहीं होगा, बाकी सेंट्रल बैंक क्या करेंगे, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन का क्या असर हो सकता है, वो बदल सकती है, लेकिन ये तिमाही के आंकड़े एक बार आ गए तो आपको 3 महीने तक उनके साथ रहना होगा और फिर जैसे आप पूछ रहे हैं वैसे दूसरी तिमाही आने से 15 दिन पहले अंदाजा लगाना होगा कि क्या अगली बार अच्छा होगा कि नहीं।
लेकिन एक अच्छी खबर जो है ना वो अनुभव बताएंगे
जी जरूर। So let's move on to the good news that Amit was talking about. India's forex reserves jumped $5.2 billion to a fresh all-time high of $689.24 billion for the week ended August 30th, as per the data from the Reserve Bank of India released today. According to the weekly statistics released by the RBI, foreign currency assets or FCAs grew by $5.10 billion to $604.1 billion. Expressed in dollar terms, the FCAs include the effect of appreciation or depreciation of non-US units like the euro, pound and yen held in the foreign exchange reserves. Gold reserves saw a surge of $129 million to $61.98 billion. Meanwhile, special drawing rights or SDRs for the above-mentioned week were up by $4 million to stand at $18.47 billion. Vishal, a lot of statistics, a lot of numbers in this story. Crux of the matter, foreign reserves are at an all-time high. I want your comment on that.
Well, we should not be surprised, even if we call it pleasantly surprised, because you know this is a momentum which has been built for quite some time.
Yes.
Now, there have been some dips somewhere here and there, but overall, generally, if you look at last few years, there has been a momentum, and that is because of the strong fundamentals of the Indian economy. And it's just not about one sector or two sector or three sectors. It's spread across sectors. If you look deeper into those numbers, we'll find out that, you know, one or two sectors might have a very an upper hand in those numbers, but these investment numbers are spread across the sectors, and that again results into the forex reserves moving high, moving up as well. So clearly, this combination gives a very clear indication as to where we are heading in terms of the way most of our sectors will perform.
Yes.
This also gives an indication to the private sector in our country that all is hunky-dory. Please, pull up your socks and make the next move.
चलिए नजर डालते हैं एशियाई यूरोपीय बाजारों पे. एशियाई बाजारों में आज मिला जुला रुझान रहा. हांगकांग का हैंगसेंग आधा प्रतिशत से अधिक की बढ़त से बंद हुआ. सिंगापुर का स्टेट साइंस और दक्षिणी कोरिया का कोस्पी मामूली बढ़त बनाने में कामयाब रहे. हालांकि जापान का निकेई आधा प्रतिशत से अधिक और चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक लगभग आधा प्रतिशत की ही गिरावट से बंद हुए. उधर यूरोपीय बाजारों के शुरूआती रुझानों में मजबूती रही. जर्मनी, लंदन और फ्रांस के शेयर सूचकांक आधा प्रतिशत तक की बढ़त के दायरे में कारोबार करते नजर आए.
Moving on to the U.S. markets, all major U.S. stocks rose yesterday following the latest inflation data, which bolstered expectations of a 25 basis point rate cut by the Federal Reserve. Nasdaq Composite advanced 1%, S&P 500 rose nearly 1%, and Dow Jones Industrial Average locked more than 0.5%.
नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI 15 सितंबर से एकीकृत भुगतान व्यवस्था UPI की भुगतान सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर रही है. उपभोक्ता अब 5 लाख रुपए तक के कुछ श्रेणी के भुगतान UPI के माध्यम से कर सकेंगे. अस्पताल, कर भुगतान, शैक्षणिक भुगतान, IPO और सरकारी प्रतिभूतियों में किए जाने वाले भुगतान इस बढ़ी हुई श्रेणी में शामिल होंगे. NPI ने UPI प्लेटफॉर्म में एक नई व्यवस्था UPI सर्कल भी लागू की है. इसके अंतर्गत प्राथमिक उपभोक्ता अपने खाते में पारिवारिक सदस्यों और मित्रों को डिजिटल भुगतान के लिए जोड़ सकते हैं.
विशाल, इफ यू नो लुक एट दिस, ऑफ कोर्स द स्टोरी दैट अमित वाज रीडिंग जस्ट नाउ, द नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हैज एक्सटेंडेड द ट्रांजैक्शन लिमिट फ्रॉम 1 लाख टू 5 लाख्स, एंड इट्स गोइंग टू कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम दिस संडे. इट्स अ वेरी हाउ इम्पोर्टेंट इज एंड हाउ सिग्निफिकेंट इज दिस स्टेप, बिकॉज वी आर सीइंग द इंक्रीजिंग डिजिटाइजेशन ऑफ पेमेंट. वी आर सीइंग UPI बीइंग यूज्ड, यू नो, यू गो आउट, यू वांट टू बाय अ बॉटल ऑफ वाटर एंड यू पेइंग इट थ्रू यू नो योर डिजिटाइज्ड पेमेंट. सो हाउ सिग्निफिकेंट इज दिस मूव?
It's very significant because, you know, this further eases up the way we go ahead and make the payments. So far, there was a limit. The limit was very much in place because of good reasons, as in, you know, one, to check frauds, yes. Two, to ensure that the optimization of the entire process, comes into place. The second important aspect here is that out here, it has become so, in India, it has become so much, immaculate, intricate, important part of our lives that we don't realize its importance. Yeah. If we have friends or relatives somewhere else residing, maybe in even European countries, even in developed economies,
yes.
Let's have a chat with them. We'll find out how difficult it is. You know, this is a very, very foreign idea still in most of the developed economies as to how do you make digital payments so easy. It's not that they don't make digital payments, but to make digital payments for, you know, just every, on every nook and corner, and it's available for everyone. It's not just for the upper middle class or the higher class or the middle class. Even the poorest person in the country has access to UPI payments. So this move will further cement the success story of the UPI, the NPCI, and the overall digital payment system, digital transactions as we call. Undoubtedly, this is one area where India has taken the lead, has planted its flag so far away that it looks like most of the other countries and economies will take some time to catch up.
Vishal, lekin jo isme baat ki gayi hai, jis tarah aapne bhi zikr kiya ki jo fraud hai usko rokne ke liye bhi ye jo seema hai ye banayi gayi hai, isliye shayad बहुत ही सीमित श्रेणी को किया गया, जैसे अस्पतालों में बिलों का भुगतान है, आपका कोई टैक्स की पेमेंट है, या आपको जो एजुकेशन फीस की पेमेंट्स हैं, आईपीओ में लगाना है या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगाना है, वहीं पे आप ये बढ़ी हुई सीमा का लाभ ले सकते हैं
जी। इसे भी आप एक जो है पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देखिए कि पहले ये आपने कंट्रोल तरीके से 4 से 5 क्षेत्रों में इसको अलाउ किया, आप उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करवा पाएंगे, अगर कोई लूप होल होगा तो आप उसको क्लोज कर पाएंगे, और फिर अगली स्टेज में जब आप जाएंगे तो शायद इसको धीरे धीरे करके ईज किया जाए, जो बाकी कैटेगरीज हैं उनके लिए भी ईज किया जा सके।
एक छोटा सा सवाल और, क्या इससे हम डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की उपयोगिता कुछ हम मानेंगे कि इसमें कुछ असर पड़ेगा?
देखिए, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की जो उपयोगिता है वो अब ऑलरेडी जो है पिछले कुछ समय से दूसरे डोमेन में पहुंच चुकी है। अब वो डेली पेमेंट्स के लिए डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं होता, अब उनका इस्तेमाल आप जो बाकी बड़ी परचेज है वो, या फिर टिकट बुकिंग है वो, या फिर आपका ओवरऑल अगर आप उसको डेबिट कार्ड को ईएमआई से लिंक करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड को ईएमआई से लिंक करना चाहते हैं, तो अब उनका इस्तेमाल उस तरह से होना शुरू हो गया और ये बदलाव कई साल पहले आ चुका है। लेकिन हाँ, आपकी बात में दम जरूर है कि जो अगर थोड़ी बहुत गुंजाइश किसी की बची होगी कि वो अभी भी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से ही कोई छोटी मोटी पेमेंट करता हो, तो वो शायद उसके लिए भी अब ये ऑप्शन हैं, और खासतौर पर इन 4-5 क्षेत्रों में, क्योंकि इन क्षेत्रों में ऑप्शन ही नहीं था अभी तक, तो आप वहां या तो डेबिट कार्ड से पेमेंट करते या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते, या फिर आप उसको जो है बैंक में आप उसको ऑर्डर प्लेस करते कि भाई आप ये इक्वेटेड मंथली आप तरीके से कि इस तारीख को आप ये पेमेंट कर सकते हैं, तो आप उसको एक सेट कर देते। लेकिन अगर अब यूपीआई के थ्रू वो कर दिया गया है, तो इन क्षेत्रों में तो कम से कम अगर थोड़ा बहुत वर्चस्व बचा होगा डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का, तो वो भी असर पड़ेगा।
चलिए, लेट्स मूव ऑन टू कमोडिटीज। क्रूड ऑयल प्राइसेस ट्रेडेड हायर टुडे ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ हरिकेन फ्रांसाइन इन द गल्फ ऑफ मेक्सिको। इन द ग्लोबल क्रूड मार्केट, ब्रेंट क्रूड वॉज अप 1.1% टू ट्रेड एट $72.76 per barrel, and the US West Texas Intermediate WTI was trading more than 1% up at $69.89 per barrel when reports last came in. Vishal, the oil secretary yesterday indicated that if the oil prices, international crude prices, continue to fall, the government may consider cutting on the fuel prices. Positive news?
Well, indeed it is a positive news for the consumers and overall for the country also. The slight dip in the global demand is a positive news for India.
And another thing I want to ask you is, because the oil prices are for the first time in quite a while they are below or almost around $70, are the stocks which are associated with the oil market, is this a good time to invest in those sectors? Rather, let's say fertilizers or other sectors like that, which are closely linked to the oil sector.
Well, those sectors have already their own basic fundamentals, pretty much again, when this question comes in, I always say that whenever you're trying to invest, don't go by anybody's advice.
Yes.
It can be on airwaves, it can be on telewaves, it can be on social media. Just listen to everybody, make your own informed decision by doing some studying, reading about it. But coming back to your question, of course, it is the right time. If you can pick up and find out some, stock or the company worth investing in terms of its strong fundamentals, then one should go ahead. But then let's not forget that the oil sector is also one of the most volatile sectors because of a lot of geopolitical pull on this,
right.
So one should keep that in mind. The risk is always better to look at the risk factors and then move ahead on.
So like you said, the investor has to decide on the basis of their own risk appetite, right?
Yes.
मैं बता देंगे सराफा बाजार में सोना आज बढ़त के साथ कारोबार करता नजर आया। शाम 6:40 पर भारत में 24 कैरेट सोना 0.8% बढ़कर 73,386 रूपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर रहा। चांदी भी 1.6% की बढ़त से 88,480 रूपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई। उधर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अक्टूबर के वायदा कारोबार में सोना 0.7% बढ़कर 73,640 रूपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर दर्ज हुआ, जबकि चांदी 1.5% बढ़कर 88,360 रूपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई। बहुत संक्षेप में विशाल, क्योंकि समय की बाध्यता है, अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में देखें $2,500 से ऊपर सोना चल रहा है, तो सोने की चमक भारतीयों में स्वाभाविक तौर पर ललक रहती है, बट सोना कितना सोना है?
सोना बहुत सोना है, और केवल भारतीयों की बात नहीं है, बाहर भी उतना ही सोना है, बिकॉज सोना एक हेज इंस्ट्रूमेंट है। सरकार हो, आम आदमी हो, भारत हो या अमेरिका हो, सबके लिए सोना बहुत सोना है.
एंड लेट मी जस्ट गिव यू द लास्ट न्यूज ऑफ द डे. द थ्री डे सेमिकॉन इंडिया 2024 विच वॉज बींग ऑर्गनाइज एट द इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट इन ग्रेटर नोएडा कंक्लूडेड टूडे. द कॉन्फ्रेंस विटनेस पार्टिसिपेशन ऑफ टॉप लीडरशिप ऑफ ग्लोबल सेमी कंडक्टर जायंट्स एंड ब्रॉट टूगेदर ग्लोबल लीडर्स कंपनीज एक्सपर्ट्स ऑफ द सेमिकॉन इंडस्ट्री. स्पीकिंग टू आकाशवाणी, प्रेजिडेंट ऑफ द सेमी कंडक्टर इक्विपमेंट एंड मटीरियल इंटरनेशनल एंड सीईओ अजीत मनोचा सेड दैट सेमिकॉन इंडिया 2024 इज द मोस्ट सक्सेसफुल एंड बिगेस्ट सेमिकॉन ऑर्गनाइज्ड इन एनी कंट्री. And on that note, Vishal, thank you so much for coming to the studio and for this discussion.
Thank you, Anuma.
And before we close, a reminder of the headlines. India's equity benchmark indices settle marginally low. Sensex sheds 72 points. Nifty ends around 0.1% down. India's forex reserves touch a record high of over $689 billion. Rupee rises 8 paisa to close at 83 rupees and 89 paisa against the US dollar. And crude prices trade higher today due to the impact of Hurricane Francine. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Namaskar. Master Santa.